हेलो एवरीवन, मैं हूं चर्चिल और ये है द गुड टॉक। मेरी लाइफ में जब भी मैं किसी चीज़ को अचीव करने में बहुत स्ट्रगल करता हूं, तो मैं अपने लाइफ लेसन्स की डायरी खोलता हूं और उस लाइफ लेसन्स की डायरी के फर्स्ट पेज पे दो लाइंस लिखी हुई है। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए भी सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इन लाइन्स को पढ़ने के बाद हर बार मुझे बहुत होप मिलती है और फिर मैं अपनी 4-स्टेप प्रोसेस की तरफ मूव कर जाता हूँ, जिसको यूज़ करके मैंने अपनी लाइफ में सभी कुछ अचीव किया है। एंड आई कैन चैलेंज यू एज वेल कि अगर आप भी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं और अगर आप इस 4-स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो आप भी वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस 4-स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, डिसाइड वॉट यू वॉन्ट। पता करने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या चाहिए। देयर इज अ कोट इन इंग्लिश विच सेज, एवरीवन गिव्स वे टू अ मैन हु नोज वेयर ही इज गोइंग। मतलब जिस आदमी को पता है कि वो कहाँ जा रहा है या क्या अचीव करने निकला है, उसके लिए सभी लोग रास्ता बना देते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। मोर ऑफन देन नॉट हम उन चीज़ों पे फोकस करते रहते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो हम फोकस करते हैं कि मुझे टमी नहीं चाहिए, हम फोकस करते हैं कि मुझे इस घर में नहीं रहना, इस तरह के फ्रेंड्स नहीं चाहिए या इस पार्टनर के साथ नहीं रहना है। बट कभी भी हमारा फोकस इन चीज़ों पर नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। एंड इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। याद करिए उस समय को जब आपने कार चलाना सीखी थी, आपके बगल में बैठा हुआ इंस्ट्रक्टर आपको बता रहा था कि सामने एक गड्ढा है, उस गड्ढे को बचा के कार निकालना। बट आपने नोटिस किया होगा कि आपका सारा ध्यान उस गड्ढे पे चला गया और अल्टीमेटली उस गड्ढे को बचाने की जगह आपकी कार उसी गड्ढे के थ्रू होते हुए निकली। ऐसा क्यों होता है? हमने बहुत कोशिश की थी उस गड्ढे को बचाने की, स्टिल हमारी कार उस गड्ढे में गई क्यों? दिस इज फॉर द सेम रीजन जो हमने डिस्कस किया, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। क्योंकि आपका सारा फोकस उस गड्ढे से बचाने में था, आपकी सारी एनर्जी उस गड्ढे पे चली गई और अल्टीमेटली आप उस गड्ढे से होते हुए निकले। अगर आपका फोकस ये होता कि मुझे सड़क से गाड़ी निकालनी है, तो आप उस गड्ढे से होते हुए कभी नहीं निकलते। यही सेम दिक्कत हमारे साथ होती है। अगर हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ वो डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअली में हम लाइफ में चाहते क्या है। तो आप लाइफ में जिस भी एरिया में जो भी चीज़ चाहते हैं, उसको बहुत स्पेसिफिकली लिखिए। राइट डाउन स्मार्ट गोल्स। स्पेसिफिकली लिखिए कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए, बहुत डिटेल में। हम कई बार गलती ये भी करते हैं कि हम लिख देते हैं मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे थोड़ी बेटर हेल्थ चाहिए, मुझे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मुझे बेटर रिलेशनशिप चाहिए। बट ये थोड़ा होता क्या है? 1 रुपया भी थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है, 10 रुपया भी थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है, 100 रुपया भी होता है, 1,00,000 रुपया भी होता है। सो वॉट इज़ दैट थोड़ा ज़्यादा फॉर यू? बी वेरी स्पेसिफिक जब आप अपने गोल्स लिखने बैठे हैं। आपको बेटर रिलेशनशिप चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बेटर रिलेशनशिप को डिफाइन कैसे किया जाए। सो उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अपने करंट रिलेशनशिप को नोटिस कीजिए और देखिए कि 1 से 10 की स्केल पे कहाँ लाई करता है। अगर वो करंट रिलेशनशिप 5 पे लाई करता है और आपको एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें आप 9 फील करें, तो आप लिखिए कि मेरा करंट रिलेशनशिप 5 है और मुझे 9 लेवल का रिलेशनशिप चाहिए। वो 9 लेवल का रिलेशनशिप क्या होगा, वो भी लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप एक दूसरे के साथ होंगे तो आप कैसा फील करेंगे, आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, आप एक दूसरे को सरप्राइज़ करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह की सभी चीज़ें बहुत डिटेल में लिखने की कोशिश कीजिए। सिमिलर थिंग हैपन्स जब हम हेल्थ के बारे में कुछ गोल्स बनाने की कोशिश करते हैं। हम सभी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बट हमें ये नहीं पता होता कि ज़्यादा एनर्जी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो यूज़ द सेम पैरामीटर, जब आपको लगता है कि आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो लिखने की कोशिश कीजिए कि आपकी करंट एनर्जी लेवल क्या है, एंड राइट डाउन अ एनर्जी लेवल जो आपका डिजायर्ड स्टेट है। और जब आप ये दोनों चीज़ें लिखेंगे, तब आप एक स्पेसिफिक गोल बना पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपने गोल्स में कुछ और पैरामीटर्स रखने की कोशिश कीजिए, उन्हें मेजरेबल रखिए। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आपने अपना गोल अचीव कर लिया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है और अब आप बड़े और बिगर गोल्स बना सकते हैं। बट अगर आपके गोल की कोई डेडलाइन नहीं है, कोई एंडलाइन नहीं है, तो आप करते जाएंगे पर अभी आपको पता नहीं चलेगा और वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा कि मैंने कुछ अचीव किया है। द थर्ड थिंग इज कि अपने गोल्स को हमेशा रियलिस्टिक रखिए और अचीवेबल रखिए। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रियलिस्टिक गोल्स वो गोल्स होते हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं, एंड अचीवेबल गोल्स वो गोल्स हो सकते हैं जो आपको लगता है आप अचीव कर सकते हैं। आप कभी भी एक ऐसे गोल को अचीव नहीं कर सकते जो आपके माइंड में आपको इम्पॉसिबल रख रहा है। तो हो सकता है कि आपका ड्रीम बहुत बड़ा हो, बट स्टार्ट विथ समथिंग जो करंटली आपके माइंड को अचीवेबल लगती है। वंस यू अचीव दैट, आपका कंफर्ट का होराइजन, आपकी अचीवमेंट का होराइजन बढ़ता जाएगा एंड धीरे 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 आप आगे बढ़ जाएंगे। बट ये बड़ा ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग में ऐसे ही गोल्स ले डाउन करें जो करंटली आपको लगता है कि आप कुछ करके अचीव कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे अचीव करते जाएंगे, आपकी ग्रोथ की मसल, आपकी अचीवमेंट की मसल बढ़ती जाएगी एंड यू विल बी एबल टू सेट बिगर एंड लार्जर गोल्स फॉर योरसेल्फ। एंड फाइनली, अपने गोल्स को हमेशा टाइम बाउंड रखिए। एंड ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम अपने गोल्स को टाइम बाउंड नहीं रखेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि हम इन्फिनिटी में जाते जाते हैं। मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, बट मुझे अगर वो आज नहीं कमाना है तो देर इज़ नो अर्जेंसी टू एक्ट ऑन इट। सो वो अर्जेंसी लाने के लिए, वो टाइम बाउंडेशन लाने के लिए अपने गोल्स को हमेशा एक स्पेसिफिक डेडलाइन के साथ रखिए। एंड जब आप ये करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ऑटोमेटिकली देर इज़ सम लेवल ऑफ सर्टेनिटी इन योर माइंड, क्योंकि अब आपके गोल्स बहुत स्पेसिफिक हैं, वो मेजरेबल हैं, वो अटेनेबल है और वो टाइम बाउंड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने गोल्स को लिखते हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम अपने गोल्स को अपने माइंड में नहीं बनाएं और उन्हें माइंड में नहीं घुमाएं। जब हम अपने गोल्स को लिखते हैं तो उनमें एक सर्टन लेवल ऑफ स्ट्रेंथ आती है और एक क्लैरिटी आती है। हम बार बार उस पीस ऑफ पेपर को या उस डायरी को रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम क्या अचीव करने अपनी लाइफ में निकले हैं। स्टेप नंबर 2, डिफाइन योर वाइज। आपको कोई चीज़ चाहिए तो जानने की कोशिश कीजिए कि आपको वो क्यों चाहिए। कभी आपने नोटिस किया है कि हम बहुत बड़े बड़े सपने सजाते हैं पर हम उन्हें कभी अचीव नहीं कर पाते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि यू आर नॉट हैप्पी वेर यू आर, बट यू आर नॉट अनहैप्पी इनफ टू डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आप हैप्पी तो नहीं हैं, बट इतना दुखी भी नहीं है या इतने कारण भी नहीं है आपके पास कि आप उसको चेंज करने के लिए कुछ करें। इस चीज़ को बदलना बहुत ज़रूरी है और ये तभी बदलेगा जब आप बहुत सारे वाइज ले डाउन करेंगे। सो टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन एज मैनी रीजन एज यू कैन कि आपको ये चेंज अपनी ज़िंदगी में क्यों लेके आना है। लिखना चालू कीजिए कि अगर आप 20 बुक्स पढ़ना चाहते हैं एक साल में तो वो 20 बुक्स क्यों पढ़ना चाहते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि मुझे ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। आप ये लिख सकते हैं कि मेरा फ्रेंड मेरे से ज़्यादा जानता है तो मुझे उससे कम्पीट करना है। हैक, आप किसी गर्ल को इम्प्रेस करने के लिए भी बुक रीडिंग कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास ज़्यादा नॉलेज होगा तो मैं किसी को पटा पाऊंगा या किसी को इम्प्रेस कर पाऊंगा। ऐसे जितने भी रीजंस हैं, जितने ज़्यादा रीजंस आप लिख सकते हैं उतने लिखने की कोशिश कीजिए। इसका एक और फ़ायदा होता है, हर दिन सेम वाई आपको हेल्प नहीं करता है। देर आर डेज जब आपको ज़्यादा नॉलेज लेने की जो इच्छा है वो मोटिवेट करेगी पढ़ने के लिए, बट देन देर आर डेज जब आपको लगेगा कि सेम लेवल ऑफ नॉलेज के साथ भी तो मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, उस दिन प्रॉबेबली अपने फ्रेंड से कम्पीट करने की फीलिंग आपको ज़्यादा मोटिवेशन देगी। एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है जो आपको काफ़ी मोटिवेशन देती है, वो फीलिंग है जेलेसी की, एनवी की या ह्यूमिलिएशन की। एसेंशियली ये सब बहुत नेगेटिव इमोशंस होते हैं, बट अगर आप इनकी एनर्जी चैनलाइज कर सकें तो आप नोटिस करेंगे कि आपके एक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी आ जाती है। जब आप इन इमोशंस को यूज़ करते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए तो आप नोटिस करेंगे कि आप ज़्यादा बेटर तरीके से एक्ट कर पाते हैं। सो अगर कभी किसी फ्रेंड ने या टीचर ने आपको ह्यूमिलिएट किया हो, आपको बहुत बुरा लगा हो, राइट इट डाउन, लिखिए कि आपको कैसा लगा था और उस एनर्जी को यूज़ कीजिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। इस तरह के जितने भी इमोशनल रिडन चीज़ें आप अपने वाइज में लिखेंगे, आप नोटिस करेंगे आपको एक्ट करने में उतनी ज़्यादा आसानी होती है। एक और चीज़ ध्यान रखिए, हमें कैरेट और स्टिक दोनों चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी आपको पॉजिटिव मोटिवेशन हेल्प करेगा कि आप बेटर ह्यूमन बन जाएंगे किसी चीज़ को करने से, कुछ काम करने से, अपनी हेल्थ पे वर्क करने से, ज़्यादा बुक्स पढ़ने से। किसी दिन आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। एक स्टिक के लिए क्वेश्चन जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ वो ये है कि आज से 5 साल बाद भी अगर मैं ऐसा ही रहूँगा तो मुझे कैसा लगेगा। और जब भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे एक्ट करने की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सो यूज़ ऑल दीज टेक्निक्स अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा वाइज लिखने के लिए। ऑल्सो अपने वाइज जब आप लिखते हैं तो उसमें इमोशनल वर्ड्स को यूज़ कीजिए। यूज़ कीजिए कि आपको कैसा लगेगा, राइट डाउन द फीलिंग्स, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं ये कर पाऊँगा, या फिर मुझे बहुत बुरा लगता है जब सामने वाला मुझे ऐसे ट्रीट करता है, इसलिए मुझे एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के दोनों इमोशंस को यूज़ करके आप एक बहुत बड़ी वाई की लिस्ट लेके आ सकते हैं, और यही वाई की लिस्ट आपको मोटिवेट करेगी। जब आप चैलेंजेस फेस करेंगे, हर्डल्स फेस करेंगे, लैक ऑफ मोटिवेशन फेस करेंगे, आप इस लिस्ट को रेफर कर सकते हैं एंड आप देखेंगे कि जैसे आप इस लिस्ट को पढ़ते हैं आपके अंदर एक रिन्यूड मोटिवेशन आता है एक्ट करने का। फाइनली, जब आप अपनी वाई की लिस्ट बना रहे हैं तो मेक श्योर के दूसरों के बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर लिखें। एज ह्यूमंस वी टेंड टू डू मोर फॉर अदर्स देन वील प्रोबेबली डू फॉर आर सेल्स। मतलब हम दूसरों के लिए शायद बहुत ज़्यादा करते हैं जितना हम अपने लिए करेंगे उससे। सो जब आप कोई गोल सेट करते हैं तो नोटिस कीजिए कि उसका आसपास के लोगों पे क्या इफेक्ट होगा। अगर आप ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं तो आपकी फैमिली पे उसका क्या असर होगा। अगर आप अपनी फिटनेस पे वर्क करते हैं तो आपके घर में, आपकी सराउंडिंग्स पे उसका असर क्या होगा। लोग आपको देख के मोटिवेट होंगे क्या, लोग आपको एज अ इंस्पिरेशन देखेंगे और अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की सारी छोटी और बड़ी चीज़ें लिखने की कोशिश कीजिए कि आपके इस पर्टिकुलर एक्शन से क्या रिपल इफेक्ट आएगा आपकी फैमिली पे, आपके क्लोज्ड वन पे, आपकी सोसाइटी पे। और अब आप नोटिस करेंगे कि आपकी वाई की लिस्ट जो पहले सिर्फ आपके बारे में बात कर रही थी वो दूसरों को इंक्लूड करने से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। स्टेप नंबर 3, मेक अ मैसिव एक्शन प्लान। लिखने की कोशिश कीजिए कि आप क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं ताकि आप उस गोल को अचीव कर सकें। ये एक्शंस छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। जिम रॉन का एक कोट है, द हार्डर यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड नो वन इज वॉचिंग द ईजियर योर लाइफ विल बी। मतलब आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे अकेले में आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। सो लिखने की कोशिश कीजिए कि आपने जो गोल अपने लिए सेट किया है जिसके लिए आपके पास इतने सारे रीजन्स हैं उसको अचीव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। लिस्ट डाउन ऑल द पॉसिबल थिंग्स छोटे से लेकर बड़े तक। एंड जब आप ये पूरी लिस्ट बना लें तो उसमें से टॉप 20 आइटम्स पिक करने की कोशिश कीजिए जो 80% रिजल्ट्स ला के देते हैं। बेसिकली हम परेटो प्रिंसिपल को यूज़ करने की बात कर रहे हैं। हमेशा लाइफ में ऐसा होता है कि 20% आइटम्स 80% रिजल्ट लेके आते हैं। सो 20% ऑफ द इंडिविजुअल्स हैव 80% ऑफ द वेल्थ। सिमिलरली आपके एक्शंस में 20% ऐसे एक्शंस होंगे जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देंगे। एंड देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज 20% एक्शंस। एक चीज़ जो इसमें बहुत हेल्प करती है इज़ हैविंग अ गुड पीयर सर्कल। हमने पीयर सर्कल के बारे में एक प्रीवियस एपिसोड किया था जहाँ हमने बात की थी कि ऐसे लोगों का पीयर सर्कल होना जो आपसे लाइफ का गेम आगे लेवल पे खेल रहे हैं बहुत हेल्प करता है आपको अपने गोल अचीव करने में। सो मेक श्योर कि जब भी आप इस तरह की जर्नी पे चल रहे हैं अपने आप को सराउंड कीजिए ऐसे लोगों से जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा मोटिवेटेड है, लाइफ का गेम आपसे ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं। एंड आप नोटिस करेंगे कि जस्ट उनके साथ रहने की वजह से आप में ज़्यादा मोटिवेशन आया है बेटर तरीके से एक्ट करने का। एंड फाइनली अपने हैव टूज को अपने गेट टूज में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। हम लोग काफ़ी बार इस तरह से बिहेव करते हैं कि हमें जो काम करना है हमारे गोल्स अचीव करने के लिए वो काम है। हम बोलते हैं आई हैव टू गो टू द जिम, आई हैव टू रीड दोज बुक्स, बट ऐसा नेसेसरली ट्रू नहीं है। ये सब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट वर्क, मेक इट प्रिविलेजेस। उनको प्रिविलेजेस की तरह ट्रीट करना चालू कीजिए कि मुझे ये करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। आई गेट टू वर्कआउट, आई गेट टू रीड दोज बुक्स, आई गेट टू बी इन अ गुड रिलेशनशिप। जब आप इस तरह का अपना माइंड शिफ्ट लेके आते हैं जहाँ आप अपने वर्क को हैव टूज को गेट टूज में कन्वर्ट कर देते हैं, आप नोटिस करेंगे कि अब आपके लिए एक्शन लेना बहुत आसान हो गया है क्योंकि प्रिविलेजेस हम सभी यूज करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 4, कोर्स करेक्शन। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम में से काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं। जब एक एरोप्लेन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहता है तो वो कॉन्स्टेंटली अपना कोर्स करेक्ट करता रहता है। वो हर सेकेंड में कुछ ना कुछ डायरेक्शन चेंज करता है। कभी उसके विंग्स ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी वो स्लाइटली लेफ्ट जाता है, कभी वो स्लाइट राइट जाता है, एंड फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पे जाके लैंड कर लेता है। सिमिलरली जब हम इस तरह की किसी जर्नी पे जाते हैं तो हमें कोर्स करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमने जो स्टेप्स और एक्शंस अपने लिए डिफाइन किए थे उनमें कॉन्स्टेंटली चेंज लेके आना बड़ा ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये 3-स्टेप प्रोसेस वापस रिपीट करना पड़े। हो सकता है समय के साथ आपके गोल्स चेंज हो गए हैं, हो सकता है समय के साथ जिन रीजंस की वजह से आपने स्टार्ट किया था उन गोल्स को अचीव करना वो चेंज हो गए हैं, तो उन्हें कॉन्स्टेंटली रीडिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है। आप बार बार इस एक्सरसाइज को कीजिए और अपना कोर्स करेक्ट कीजिए एंड आप नोटिस करेंगे कि अब आप में ज़्यादा कैपेसिटी है अचीव करने की और आप तेज़ी से आप अपनी गोल्स की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि सोशल मीडिया आजकल एक बहुत ही बड़े एडिक्शन के फॉर्म में आ रहा है और हमें अपने गोल्स को अचीव करने में रोकने में सबसे बड़ा हिंड्रेंस के तौर पे आता है। अगर आप भी इससे स्ट्रगल करते हैं तो आप हमारा वीडियो चेक कर सकते हैं अबाउट सोशल मीडिया एडिक्शन एंड कैसे आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो सो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें और नीचे कमेंट्स में मेंशन करें कि आपको क्या बातें अच्छी लगी और किस तरीके से आप उनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं हूँ चर्चिल एंड यह है द गुड टॉक। बाय बाय।